यीशु मसीह का प्रकटीकरण संख्या 9 यशाया का अंतिम भविष्य सूचक वृत्तांत, मसीहा का प्रकटीकरण और 144,000 की भविष्य सूचक भूमिका।
यशाया की पुस्तक और विशेषकर अध्याय 40 से 66 में पाया जाने वाला यशाया का अंतिम भविष्य सूचक वर्णन एक ऐसी प्रस्तुति है जो कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी संबंधी सत्यों पर जोर देती है। ये सत्य सीधे यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य से जुड़े हैं, जिसे अब जब हम मानव परीक्षा काल के समापन के निकट पहुंच रहे हैं, अनावृत किया जा रहा है। उन्हीं सत्यों में से एक अल्फा और ओमेगा का प्रकाशन है। बाइबल की कोई अन्य पुस्तक ईश्वर के चरित्र के उस पहलू के विषय में यशाया की गवाही की बराबरी नहीं करती, जो किसी बात के आरंभ के साथ उसके अंत को दर्शाता है।
किसने ये किया और पूरा किया जो आदि से पीढ़ियों को बुलाता है? मैं यहोवा प्रथम हूं और अंतिमों के संग भी मैं ही हूं। यशाया 48:4।
यशाया में परमेश्वर ये बताता है कि वो क्या बात है जो सिद्ध करती है कि परमेश्वर परमेश्वर है।
यहोवा इसराइल का इतने साल हो ये। इसराइल के पास आने वाला बतीशा इतने सालों का यहोवा यूं कहता है, मैं पहला हूं और मैं अंतिम हूं और मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे समान कौन है वो बुलाए, उसे प्रकट करे और मेरे लिए उसे क्रमबद्ध करे। जब से मैंने प्राचीन लोगों को ठहराया है और जो बातें आने वाली हैं, जो आगे होंगी, वे उन्हें दिखाएं। डरो मत, भयभीत न हो। क्या मैंने उस समय से तुझे नहीं बताया और प्रकट नहीं किया? तुम तो मेरे साक्षी हो। क्या मेरे सिवाय कोई परमेश्वर है? नहीं, कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। यशाया 44:8।
यशाया का अंतिम भविष्य सूचक वृत्तांत यीशु द्वारा प्रतिज्ञात सांत्वनादाता के आगमन की परिपूर्ण और अंतिम पूर्ति पर जोर देता है।
मेरी सुनो, हे तुम जो धर्म का पीछा करते हो, जो प्रभु को खोजते हो, उस चट्टान की ओर देखो जिससे तुम तराशे गए हो और उस खदान के गड्ढे की ओर जिससे तुम खोदे गए हो। अपने पिता अब्राहम की ओर देखो और उस सारा की ओर जिसने तुम्हें जन्म दिया, क्योंकि मैंने इसे अकेला बुलाया और उसे आशीष दी और उसे बढ़ाया, क्योंकि प्रभु सियोन को सांत्वना देगा, वो उसके सब उजड़े स्थानों को सांत्वना देगा और वो उसके निर्जन प्रदेश को अदन के समान और उसकी मरुभूमि को प्रभु की वाटिका के समान बना देगा। वहां आनंद और हर्ष मिलेगा, धन्यवाद और गीत का स्वर। यशाया 51:1-3।
सांत्वनादाता जुलाई 2030 में आया। यशाया के वर्णन में रेखांकित एक और सत्य, सात गर्जनाओं का छिपा हुआ तीन चरणीय इतिहास है, जो एमेत की संरचना है। वो हिब्रू शब्द जो हिब्रू वर्णमाला के प्रथम 13वें और अंतिम अक्षरों से बनाया गया था।
नगर से कोलाहल की ध्वनि, मंदिर से ध्वनि, प्रभु की वो ध्वनि जो उसके शत्रुओं को प्रतिफल देती है। यशाया 66:6।
यशाया में प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण सत्य ये है कि ईश्वर के कार्यकारी न्याय के साधन के रूप में इस्लाम की भूमिका सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका पर और उसके बाद विश्व पर रविवार के प्रवर्तन के पारित नाद होने पर होगी।
माप के अनुसार जब वो फूटता है तो उससे विवाद करेगा। वो पूर्वी पवन के दिन अपनी कठोर पवन को रोकता है। यशाया 27:8।
इन सभी सच्चाइयों को आधी रात की पुकार के संदेश के घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आधी रात की पुकार वही है जो 10 कुवारियों का दृष्टांत उस संदेश के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। वह संदेश जो यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का है, जिसे पिता ने यीशु को दिया, यीशु ने गब्रियल को, गब्रियल ने यूहन्ना को दिया और यूहन्ना ने उसे लिखकर कलीसियाओं को भेज दिया। हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 से आरंभ होने वाली भविष्यद्वाणी घटनाओं के क्रम को पुष्ट करने हेतु यशाया के अंतिम आख्यान का उपयोग करते आ रहे हैं और अब हम अध्याय 12 पे पहुंच गए हैं, जहां हम देखते हैं कि सूर्य से वस्त्र पहने हुई स्त्री को ऐसे प्रतीकवाद के साथ चित्रित किया गया है जिसे यशाया अत्यंत दृढ़ता से प्रतिपादित करते हैं कि मसीह किसी बात के अंत को उसके आरंभ के द्वारा स्पष्ट करते हैं।
और स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया,
एक स्त्री जो सूर्य से वस्त्र धारण किए हुए थी, उसके पांवों के नीचे चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा में चिल्लाती हुई जन्म देने के कष्ट उठा रही थी। और स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने स्वर्ग के तारों का तिहाई भाग खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया, और वो अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा रहा जो जन्म देने को तैयार थी, ताकि जैसे ही उसका बच्चा जन्मे उसे निगल ले। और उसने एक पुत्र अर्थात पुत्र पुरुष जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सब राष्ट्रों पर शासन करने वाला था, और उसका बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:1-4।
प्रकाशित वाक्य 5 की स्त्री समूचे इतिहास में परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का प्रतीत है। प्राचीन शाब्दिक इज़राइल के 12 गोत्र परमेश्वर की वाचा के चुने हुए लोगों के आरंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 12 गोत्र प्राचीन शाब्दिक इज़राइल के समापन का प्रतीत भी हैं, जब मसीह ने 12 चेलों को चुना। प्राचीन शाब्दिक इज़राइल के अंत के वे 12 चेले आधुनिक आत्मिक इज़राइल के आरंभ के 12 प्रेरित भी थे। आरंभ के 2 गवाह और अंत का 1 गवाह मिलकर 3 गवाह ठहरते हैं, जो 144,000 को आधुनिक आत्मिक इज़राइल के समापन के रूप में पहचानते हैं। 144,000 वही ध्वज भी है जिसे उनके भाइयों ने बाहर निकाल दिया था। वे वो ध्वज हैं, मरी हुई सूखी हड्डियों की वो घाटी जो महान नगर सदोम और मिस्र की सड़क पर पड़ी थी, जिनकी हत्या उस पशु द्वारा की गई थी जो अथाह गड्ढे से ऊपर आया था। वे वो ध्वज हैं जो उस मुकुट के पत्थर हैं जिसे स्त्री अपने सिर पर पहने हुए है।
और उस दिन उनका परमपेश्वर यहोवा उन्हें अपनी प्रजा के झुंड के समान बचाएगा, क्योंकि वे मुकुट के रत्नों के समान होंगे जो उसकी भूमि पर पताका की तरह ऊंचे उठाए जाएंगे। जकरिया 9:16।
वो ध्वज जो 144,000 हैं पत्थर हैं, जैसे कि मसीह है,
और सब ने वही आत्मिक पेय पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह थी। 1 कुरिन्थियों 10:4।
मसीह 144,000 का प्रतीक है, और पत्रस पौलुस से सहमत है कि मसीह वह जीवित पत्थर हैं जिसे अस्वीकार किया गया था। और पत्रस ने ये भी बताया कि परमेश्वर की प्रजा भी जीवित पत्थर है।
उसके पास आकर जो जीवित पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो अस्वीकार किया, परंतु जो परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर बनाए जा रहे हो, एक पवित्र याजकत्व, ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। 1 पतरस 2:4-5।
वे 144,000 केवल स्त्री के मुकुट के रत्न ही नहीं हैं, वे स्वयं मुकुट ही है।
सियोन के कारण मैं मौन नहीं रहूंगा और यरूशलेम के कारण मैं विश्राम नहीं करूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उजियाले के समान प्रकट न हो जाए और उसका उद्धार जलते हुए दीपक के समान न हो जाए। अन्य जातियां तेरी धार्मिकता देखेंगी और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तुझे एक नया नाम दिया जाएगा जिसे प्रभु के मुख से रखा जाएगा। तू प्रभु के हाथ में महिमा का मुकुट और अपने परमेश्वर के हाथ में राजसी किरीट होगा। यशाया 1:3।
मसीह 144,000 का प्रतिरूप है, वो चट्टान है और वे पत्थर है। वे प्रभु के हाथ में महिमा का मुकुट है और मसीह महिमा का मुकुट है।
उस दिन सेनाओं का प्रभु अपनी प्रजा के शेष लोगों के लिए महिमा का मुकुट और शोभा का किरीट, जो न्याय की गद्दी पर बैठता है, उसके लिए न्याय की आत्मा, और जो युद्ध को फाटक तक लौटा देते हैं उनके लिए सामर्थ्य होगा। यशाया 28:5-6।
जब आरंभ और अंत के संदर्भ में संख्या 12 पर विचार किया जाता है, तो स्त्री सीनै पर्वत पर प्राचीन इज़राइल में स्थापित चुने हुए वाचा के लोगों से लेकर 144,000 के इतिहास तक उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका प्रतिरूप मसीह में दिखता है और मसीह का जन्म उन मरी हुई सूखी हड्डियों के पुनरुत्थान का प्रतिरूप था उसी सड़क से जहां उन्हें 18 जुलाई 2020 को मार दिया गया था। वो दो चरणीय प्रक्रिया जिसे यहेजकेल 37 बहुत संक्षेप में स्पष्ट करता है और जो उन दो भविष्यद्वक्ताओं को जीवित करती है उसका पहला उल्लेख आदम की सृष्टि में मिलता है। आदम दो चरणों में रचा गया था, पहले उसका निर्माण किया गया, फिर मसीह ने उसमें जीवन की श्वास फूंकी, ठीक वैसे ही जैसे यहेजकेल में चारों पवनों की श्वास ने सूखी हड्डियों को जीवन दिया। आदम एक पूर्णतः परिपक्व मनुष्य के रूप में रचा गया था, परंतु उसकी रचना फिर भी उसका जन्म ही थी। 144,000 मृत्यु की घाटी से होकर जाने वाली सड़क पर मरे पड़े रहने के 3 और आधे प्रतीकात्मक दिनों के बाद जन्मते हैं। 144,000 उसी स्त्री के द्वारा जन्मते हैं जिसने उस पुरुष शिशु को जन्म दिया था जो लोहे की छड़ी से शासन करने वाला था। इतिहास भर कलीसिया के प्रतीक के रूप में प्रकाशित वाक्य 12 की स्त्री वही प्रतीकवाद दर्शाती है जो दानियेल 2 के पर्वत का है।
प्रकाशित वाक्य एक मुहरबंद पुस्तक है, पर यह एक खुली हुई पुस्तक भी है। ये इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में होने वाली अद्भुत घटनाओं का वर्णन करती है। इस पुस्तक की शिक्षाएं निश्चित और स्पष्ट हैं, रहस्यवादी और अगम्य नहीं। इसमें वही भविष्यवाणी की धारा उठाई गई है जो दानियेल में है। कुछ भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने दोहराया है जिससे ये प्रकट होता है कि उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। जो बातें बहुत बड़े महत्व की नहीं होती प्रभु उन्हें नहीं दोहराते। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 9-8।
दानियेल में पाई जाने वाली भविष्यवाणी की वही धारा प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ाई गई है। दानियेल का वो पत्थर जो बिना हाथों के पहाड़ से काटा गया है पतरस के जीवित पत्थर हैं जो एक आत्मिक घर एक पवित्र याजकत्व के रूप में बनाए जाते हैं और दानियेल का पत्थर 144,000 का भी प्रतिनिधित्व करता है। वो पहाड़ इतिहास भर में परमेश्वर की कलीसिया है।
और इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नाश ना होगा और वो राज्य दूसरे लोगों के हाथ में नहीं छोड़ा जाएगा, परंतु वो इन सब राज्यों को तोड़कर चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर देगा और वो सदा सर्वदा तक स्थिर रहेगा। क्योंकि तूने देखा कि पहाड़ से बिना हाथों के एक पत्थर काटा गया और उसने लोहे पीतल मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि आगे क्या होने वाला है और ये स्वप्न सत्य है और उसकी व्याख्या निश्चित है। दानियेल 2:24-43।
144,000 का मध्य रात्रि की पुकार संदेश भी उत्तर वृष्टि के रूप में दर्शाया गया है और उत्तर वृष्टि के समय ही परमेश्वर उस राज्य को स्थापित करता है जिसका प्रतीक दानियेल का पत्थर है।
पश्चात की वर्षा उन पर आ रही है जो शुद्ध है, तब सभी उसे पूर्ववत ग्रहण करेंगे। जब चारों स्वर दूत छोड़ देंगे मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे। पछेती वर्षा किसी को नहीं मिलती सिवाय उनके जो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं। मसीह हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु के लहू के द्वारा सब विजयी हो सकते हैं। पूरा स्वर्ग इस कार्य में रुचि रखता है, स्वर्गदूत भी रुचि रखते हैं। स्पॉल्डिंग एंड मगैन 3।
इस्लाम की 4 वायुएं रविवार के कानून के समय छोड़ी जाती हैं और तब मसीह अपना राज्य स्थापित करते हैं। ये दानियेल अध्याय 2 के आध्यात्मिक राज्यों के दिनों में घटित होता है। नबूकदनेक के स्वप्न में अंतिम 4 आध्यात्मिक राज्य पहले 4 शाब्दिक राज्यों द्वारा प्रतिरूपित थे। शाब्दिक बाबुल, मेद फारस, यूनान और रोम आध्यात्मिक बाबुल, मेद फारस, यूनान और रोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिक बाबुल वह सोने का मस्तक है जिसे 1758 में घातक घाव लगा। जैसा कि 7 काल तक नबूकदनेस्सर का कुछ समय के लिए सत्ता से हटाया जाना इसका संकेत है। जब अजगर पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता की त्रिगुणी एकता 7 में से 8वां राज्य बनाती है, तब वो अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर की प्रतिमा में दर्शाए गए सभी आध्यात्मिक राज्यों से मिलकर बनेगा। प्रतिमा के 4 आध्यात्मिक राज्यों के आरंभ और अंत में पापाई सत्ता अपने मृत और पुनरुत्थित रूपों में आध्यात्मिक सोने का मस्तक है। 4 राज्यों में दूसरा होने के नाते
संयुक्त राज्य अमेरिका को आध्यात्मिक मादी फारस के रूप में दर्शाया गया है। चार राज्यों में तीसरा होने के नाते संयुक्त राष्ट्र को आध्यात्मिक यूनान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और ये सभी मिलकर अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता की त्रिगुणी एकता बनाते हैं, ताकि आठवां राज्य, जो सात में से है, स्थापित किया जाए। पापाई सत्ता विरोधी मसीह है और मसीह की नकल करने का प्रयास करती है। इस संदर्भ में अंतिम चार आध्यात्मिक राज्यों में पापाई सत्ता पहली भी है और अंतिम भी।
पहाड़ से काटा गया पत्थर एक ऐसा राज्य बन जाता है जो सारी पृथ्वी को भर देता है, और उसे इन राजाओं के दिनों में एक पताका के रूप में स्थापित किया जाता है, क्योंकि उस प्रतिमा के सभी आध्यात्मिक राज्य अंत के दिनों में सक्रिय रूप से उपस्थित है। पताका का ऊंचा उठाया जाना, जो मसीह के राज्य की स्थापना है, तब होता है जब इस्लाम की चार पवनें मुक्त की जाती हैं और रविवार के कानून के समय अंतिम वर्षा बिना माप के उंडेली जाती है।
पर्वत से तराशा गया पत्थर पृथ्वी के सभी आध्यात्मिक राज्यों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोना से दर्शाए गए हैं। 144,000 मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 12 में पुरुष शिशु है, जिसका जन्म 144,000 के जन्म का प्रतीक था। पुरुष शिशु लोहे की छड़ी से सब जातियों पर राज्य करेगा, उसी छड़ी से वो जातियों को चूर चूर कर देगा।
मैं ये आज्ञा सुनाऊंगा, यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। मुझसे मांग और मैं राष्ट्रों को तेरी विरासत में दूंगा, और पृथ्वी के छोरों तक को तेरे अधिकार में कर दूंगा। तू लोहे के दंड से उन्हें चूर कर देगा, कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकना चूर कर देगा। भजन संहिता 2:7-9।
परमेश्वर का पुत्र पिता से उत्पन्न हुआ था। बहुत से लोग इस सत्य को लेते हैं और अपने ही विनाश के लिए उसे तोड़ मरोड़ देते हैं। बिगॉटन का अर्थ जन्म देना होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई समय कभी नहीं था जब मसीह अस्तित्व में नहीं थे।
अब आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि अंतिम दिनों में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे, बहकाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे, कपट से झूठ बोलते हुए। उनका विवेक तपे हुए लोहे से दागा हुआ होगा। धर्म त्याग के कार्य के अंतिम घटनाक्रमों से पहले विश्वास में भ्रम होगा। परमेश्वर के रहस्य के विषय में स्पष्ट और निश्चित विचार नहीं होंगे। एक के बाद एक सत्य विकृत कर दिए जाएंगे, और बिना विवाद के। भक्ति का भेद महान है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, संसार में उस पर विश्वास किया गया, महिमा में ऊपर उठा लिया गया। बहुत से लोग मसीह के पूर्व अस्तित्व का इनकार करते हैं, और इसलिए उसके ईश्वरत्व का भी। वे उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये मसीह का पूर्ण इनकार है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जो आदि से पिता के साथ एक था। उसी के द्वारा संसारों की रचना हुई। साइंस ऑफ द टाइम्स, 28 मई 1894।
जब मसीह की पहचान पिता के उत्पन्न के रूप में की जाती है, तो यह मसीह से संबंधित एक सत्य को दर्शाता है, एक ऐसा सत्य जो नष्ट हो जाता है यदि उसे मानवीय माता पिता के संबंधों के ढांचे में जबरन डाला जाए। हम परमेश्वर का आकलन अपने मानवीय दृष्टिकोण से नहीं कर सकते। हम परमेश्वर का आकलन केवल उसी रूप में कर सकते हैं जैसा वो स्वयं अपने बारे में अपना आकलन हमें प्रस्तुत करता है।
दुष्ट अपना मार्ग त्याग दे और अधर्मी मनुष्य अपने विचार त्याग दे, और वो यहोवा की ओर लौट आए तो वो उस पर दया करेगा, और हमारे परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो बहुतायत से क्षमा करेगा। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया 55:3।
बिगॉटन शब्द को इस दावे के लिए तोड़ मरोड़ना कि कभी ऐसा समय था जब पिता ने मसीह को उत्पन्न किया, भटकाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देने के समान है। हमारे वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य से मैं केवल ये इंगित कर रहा हूँ
कि प्रकाशित वाक्य 12 की स्त्री उस पुरुष बालक को जन्म देने वाली थी जो लौहले दंड से राष्ट्रों पर राज्य करने वाला है। 144,000 भी लौह दंड से राष्ट्रों पर राज्य करेंगे।
थ्यातिरा की कलीसिया तब लौटती है जब रविवार के कानून के समय पोप सत्ता का घातक घाव चंगा हो जाता है। उस इतिहास में परमेश्वर की प्रजा को दी गई प्रतिज्ञा ये है कि जो विजयी होंगे वे राष्ट्रों पर लोहे की छड़ी से शासन करेंगे।
और जो जय पाता है और जो अंत तक मेरे कार्यों को थामे रहता है उसे मैं राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे की छड़ी से उन पर शासन करेगा। वे कुम्हार के बर्तनों की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसा कि ये अधिकार मुझे मेरे पिता से मिला है। प्रकाशित वाक्य 2:26-27।
थुआतीरा की कलीसिया के अंतिम प्रकट रूप में जो परमेश्वर के लोग हैं वे 144,000 हैं। आरंभ में उस स्त्री ने मसीह को जन्म दिया और अंत में वो 144,000 को जन्म देती है जो मेमने का अनुसरण करते हैं।
और उन्होंने सिंहासन के सामने और 4 पशुओं तथा प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गाया, और उस गीत को उन 144,000 के सिवाय कोई मनुष्य सीख न सका जो पृथ्वी से छुड़ाए गए थे। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अपवित्र नहीं हुए क्योंकि वे कुमारे हैं। ये वे हैं जो मेमने का जहां कहीं वो जाता है अनुसरण करते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं ताकि वे परमेश्वर और मेमने के लिए पहिलौठे फल हों। प्रकाशित वाक्य 14:3-4।
मसीह पहले जन्मे और 144,000 मेमने का अनुसरण करते हैं, इसलिए वे अंत में जन्मे, मसीह परमेश्वर के पास उठा लिए गए, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाशित वाक्य 11 के 2 गवाह उठा लिए गए थे। उसके दोनों बच्चे पिता के पास उठाए जाते हैं।
और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे के राजदंड से सब जातियों पर शासन करने वाला था, और उसका बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन तक उठा लिया गया। प्रकाशित वाक्य 2:5।
मसीह है, सेनाओं के प्रभु के रूप में याकूब का भाग भी है और इज़राइल उसकी विरासत की छड़ी है, और इज़राइल उसकी युद्ध कुल्हाड़ी और उसके युद्ध के हथियार भी है जिनका उपयोग वो जातियों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए करता है।
याकूब का भाग उनके समान नहीं है क्योंकि वही सब वस्तुओं का रचयिता है और इज़राइल उसकी विरासत की छड़ी है। सेनाओं का प्रभु उसका नाम है। तू मेरा युद्ध कुल्हाड़ा और संग्राम के हथियार है, क्योंकि तेरे द्वारा मैं जातियों को चकनाचूर करूंगा और तेरे द्वारा मैं राज्यों का नाश करूंगा। यिर्मयाह 51:19-20।
मसीह और 144,000 दोनों ही लोहे की छड़ी से जातियों पर शासन करते हैं और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मसीह याकूब का भाग है पर उसके लोग भी ऐसे ही है,
क्योंकि यहोवा का भाग उसकी प्रजा है, याकूब उसकी विरासत का भाग है। व्यवस्था विवरण 32:9।
पहाड़ से निकला वो पत्थर जो परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है उसकी कलीसिया की अंतिम अभिव्यक्ति है जो उसकी महिमा से पृथ्वी को भर देती है, और उसी कलीसिया को परमेश्वर की युद्ध कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि वो मूर्ति के पैरों पर प्रहार करे और उन राज्यों को ग्रीष्मकाल के खलिहानों की भूसी में बदल दे। वे राज्य हवा से उड़ा दिए जाते हैं।
तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब एक साथ टुकड़े टुकड़े हो गए, और वे ग्रीष्म ऋतु के खलिहानों की भूसी के समान हो गए, और हवा उन्हें उड़ा ले गई कि उनके लिए कोई स्थान न पाया गया। और वो पत्थर जिसने उस मूर्ति को मारा था एक बड़ा पर्वत बन गया और पूरी पृथ्वी को भर दिया। दानियल 2:35।
स्त्री के प्रतीकवाद को उस ध्वज के संदर्भ में रखना आवश्यक था जिसे स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाया जाता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय उस युद्ध के आरंभ को चिन्हित करता है जो मसीह और शैतान के बीच स्वर्ग में शुरू हुआ था, और ऐसा करते हुए वह स्वर्ग में उस युद्ध की भी पहचान कराता है जो मसीह और शैतान के बीच के महान संघर्ष के अंत को चिन्हित करता है। प्रकाशित वाक्य के 12वें और 13वें अध्याय महान संघर्ष के अंतिम युद्ध का चित्रण करते हैं, और वे ऐसा स्वर्ग में संग्राम करते हुए शैतान के प्रतिनिधियों और 144,000 को दर्शाकर करते हैं। अगले लेख में हम अंतिम दिनों में स्वर्ग में होने वाले उस युद्ध पर चर्चा करेंगे। जिसकी झलक आरंभ में हुए स्वर्गीय युद्ध में मिलती है।
और मैंने पृथ्वी से ऊपर आते हुए एक और पशु को देखा, और उसके दो सींग थे जैसे मेमने के, और वो अजगर के समान बोलता था। और वो पहले पशु के सामने उसकी सारी शक्ति का प्रयोग करता है, और पृथ्वी तथा उसके निवासियों को उस पहले पशु की पूजा करवाता है जिसका घातक घाव चंगा हो गया था। और वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग से पृथ्वी पर आग उतार देता है। और उन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें वो उस पशु के सामने करने की शक्ति रखता था, पृथ्वी पर रहने वालों को धोखा देता है, और पृथ्वी के निवासियों से कहता है कि वे उस पशु की एक प्रतिमा बनाएं जिसे तलवार से घाव लगा था फिर भी वो जीवित रहा। और उसके पास उस पशु की प्रतिमा में प्राण देने की शक्ति थी, ताकि पशु की प्रतिमा बोल भी सके, और वो ये करा दे कि जितने लोग पशु की प्रतिमा की पूजा न करें वे मार डाले जाएं। और वो सबको, छोटे और बड़े, धनी और निर्धन, स्वतंत्र और दास, उनके दाहिने हाथ में या उनके माथे पर एक चिन्ह लगवा देता है, ताकि कोई मनुष्य खरीद या बेच न सके सिवाय उसके जिसके पास वो चिन्ह या उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या हो। यहाँ बुद्धि का काम है, जिसके पास समझ है वो उस पशु की संख्या की गणना करे, क्योंकि वो मनुष्य की संख्या है, और उसकी संख्या है 666। प्रकाशित वाक्य 13:11-18।